एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं
जी।
आधुनिक जापान की कहानी। कैसे एक देश जो काफी हद तक दुनिया से कटावा सा था,
हाँ बिल्कुल अलग थलग,
वो अचानक एक बड़ी ताकत बन गया। इसके लिए हम क्रिस्टोफर गोटो जोन्स की दो किताबें हैं मॉडर्न जापान और मॉडर्न जापान अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उनके सार को समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, और ये कहानी सिर्फ जापान की नहीं है, मुझे लगता है इसमें हम सब के लिए मतलब सीखने को बहुत कुछ है।
सही कहा।
बड़ा सवाल तो यही है कि जापान ने पश्चिमी असर के बीच अपना रास्ता कैसे तलाशा, कैसे वो मॉडर्न बने पर अपनी पहचान भी बचाए रखी। ये जो पूरी कश्मकश है ना बदलाव की, पहचान की, परंपरा की,
हाँ,
वो आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में शायद हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए मायने रखती है।
तो फिर लेखक से ही शुरू करते हैं।
हाँ बिल्कुल। क्रिस्टोफर गोटो जोन्स ये जापानी स्टडीज और फिलोसफी मतलब दर्शन की दुनिया में काफी जाने माने विद्वान हैं।
जी, इन्होंने लीडन यूनिवर्सिटी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी जगहों पर पढ़ाया है और इनकी खासियत है जापानी सोच, वहाँ की राजनीति, कल्चर, उसका जो बौद्धिक इतिहास है उसकी गहरी समझ।
और इनकी बातों में जो सबसे दिलचस्प लगता है वो शायद ये है कि ये सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ।
हाँ बिल्कुल,
ये पूरब और पश्चिम की सोच को मिलाते हैं ये समझने के लिए कि जो हुआ वो क्यों हुआ।
सही, वो क्यों बहुत जरूरी है।
हाँ,
और ये जापानी नजरिए से भी देखते हैं और बाहर की दुनिया के नजरिए से भी, मतलब एक संतुलन है।
जी।
और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वक्त के साथ जापानी होने का मतलब कैसे बदला। जापान इनके लिए सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं है,
नहीं बल्कि विचारों का, बहसों का एक अखाड़ा है कह सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, एक जीता जागता मंच। अगर इन किताबों के निचोड़ पर आए तो इनका मकसद क्या है?
देखिए, मूल मकसद तो यही समझाना है कि जापान जो 19वीं सदी के बीच में एक तरह से बंद सामंती समाज था, वो कैसे 20वीं सदी के खत्म होते होते दुनिया के सबसे आगे बढ़े औद्योगिक लोकतांत्रिक देशों में गिना जाने लगा।
और कमाल ये है कि ये सब करते हुए उसने अपनी खास पहचान, अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी।
हाँ, यही सबसे बड़ी बात है। तो ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, ये उस सफर की उलझने, उसके अंदर के विरोधाभास और जापान की जो खुद को समझने की कोशिश रही है,
उसका एक गहरा विश्लेषण है।
बिल्कुल। और इस सफर से कुछ बहुत ही मजेदार सोचने वाले आइडियाज निकलते हैं।
जैसे
पहला तो ये कि जापान की जो मॉडर्न पहचान बनी वो सिर्फ बाहर से चीजें उधार लेकर नहीं बनी।
अच्छा।
बल्कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर, चुनकर बाहरी प्रभावों को लिया, फिर उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ढाला, बदला और अपनी संस्कृति के साथ मिला दिया।
मतलब अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा।
हाँ, जड़ों को पकड़े रखा। ये दिखाता है कि मॉडर्न बनने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है कि आप अपनी पुरानी हर चीज छोड़ दें। एक और रास्ता है समझदारी से अपनाना, बदलना, सांस्कृतिक अनुकूलन कह सकते हैं।
और दूसरा आइडिया?
दूसरा ये कि मॉडर्न जापान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस बन गई और खत्म, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
अच्छा, मतलब डायनामिक।
हाँ बिल्कुल, गतिशील, जटिल और कई बार विरोधाभासी भी। जापान हमेशा खुद से एक तरह की बातचीत करता रहा है, परंपरा अच्छी है या नई चीजें, शांति जरूरी है या अपनी सुरक्षा, आर्थिक ताकत बड़ी है या घटती आबादी का संकट।
तो ये अंदरूनी कश्मकश और फिर भी टिके रहने की कहानी है।
एकदम, लचीलापन और विरोधाभास दोनों साथ साथ।
और तीसरा?
तीसरा ये कि दोनों किताबें मिलकर इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढती हैं कि भाई जापान ने अपनी सांस्कृतिक पहचान खोए बना ये मॉडर्न बनने का मुश्किल सफर तय कैसे किया।
हाँ, ये पहेली जैसा लगता है।
और ये हमें आधुनिकता या मॉडर्निटी के बारे में क्या बताता है? ये असल में हर समाज की उस चुनौती को दिखाता है कि बदलाव को गले कैसे लगाएं और अपनी पहचान भी कैसे बचाएं। ये हमेशा एक मुश्किल संतुलन होता है।
तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं ये सब हुआ कैसे। शुरुआत कहाँ से करें?
1850 के आसपास।
हाँ, वही दौर जब जापान लगभग पूरी दुनिया से कटा हुआ था, एक बंद दरवाजे जैसा।
फिर पश्चिमी ताकतों ने दस्तक दी, खासकर अमेरिका के कोमोडोर पेरी, उन्होंने एक तरह से जोर डालकर जापान को दुनिया के लिए खोल दिया।
बिल्कुल, ये जापान के लिए एक बड़ा सदमा था, एक संकट का समय। पर यहीं से, जैसा हमने कहा, जापान ने सिर्फ हालात का शिकार बनने के बजाय
चुनकर अपनाने का रास्ता चुना। पहला संकेत यहीं मिला।
हाँ, और इसी उथल पुथल में जो पुरानी शोगुन वाली व्यवस्था थी, तोकुगावा शासन, वो चरमरा गई।
तो और फिर हुई मेजी बहाली,
मेजी रेस्टोरेशन जिसे कहते हैं।
जी, पर यह सिर्फ सम्राट का राज वापस लाना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, एक तरह की क्रांति।
हाँ बिल्कुल, और एक नया नारा गूंजा, फुकुकू क्यों है?
अमीर देश मजबूत सेना।
इसका मतलब ये पश्चिम की अंधी नकल नहीं थी।
नहीं, ये उनकी अपनी रणनीति थी, देश को बचाए रखने की, मजबूत बनाने की। उन्होंने पश्चिम से सीखा जरूर, बहुत कुछ सीखा, शिक्षा का नया तरीका, नई तरह की सेना, लेकिन उसे अपने सांचे में ढाला। पुरानी जो ऊंच नीच वाली वर्ग व्यवस्था थी उसे खत्म किया।
और इस बदलाव को संभालने में कुछ विचारकों का भी हाथ था, जैसे फुकुजावा युकिची।
हाँ बिल्कुल, फुकुजावा जैसे लोगों ने पश्चिमी विज्ञान और विचारों को अपनाने की बात तो की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अपनी जापानी सांस्कृतिक पहचान, अपनी स्वायत्तता बनाए रखना बहुत जरूरी है।
तो ये नींव रखी गई, इसके बाद क्या हुआ 1890 के बाद?
हाँ, अगला दौर आता है लगभग 1890 से 1945 तक का। इसमें कई बड़ी चीजें हुई। एक तो सरकार का नया ढांचा बना, मीजी संविधान आया, संसद बनी,
लोकतंत्र की तरफ एक कदम।
हाँ, पर यह भी दिलचस्प है, ढांचा तो पश्चिमी जैसा था पर उसमें जापानी सोच, खासकर सम्राट की भूमिका, वो बनी रही। इसे कभी कभी शाही लोकतंत्र भी कहते हैं।
अच्छा, और इसी दौर में जापान एक ताकत के रूप में उभरा।
बिल्कुल, उसने चीन को हराया, फिर रूस जैसी बड़ी ताकत को हराया, वो एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया।
इसका साम्राज्यवाद पश्चिमी देशों जैसा ही था या कुछ अलग था?
कुछ समानताएं थीं, पर कुछ फर्क भी थे। इसमें ऊंच नीच का अपना एक जापानी नजरिया था, सभ्यता की उनकी अपनी परिभाषा थी जो इसे पश्चिम से थोड़ा अलग बनाती थी।
लेकिन फिर कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया।
हाँ, यही एक दुखद मोड़ आया। 20वीं सदी की शुरुआत से, खासकर ताइशो और शुरुआती शोवा दौर में, देश में कट्टर राष्ट्रवाद और सेना का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो आधुनिकीकरण देश को मजबूत बनाने के लिए शुरू हुआ था, अब वो एक आक्रामक साम्राज्यवादी रास्ते पर चल पड़ा।
और इसमें पुरानी परंपराओं का भी इस्तेमाल हुआ, जैसे बुशीदो।
हाँ, बुशीदो यानी समुराई योद्धाओं के जो आदर्श थे, उन्हें एक नए उग्र रूप में पेश किया गया सेना के मकसदों के लिए। ये सब धीरे धीरे दूसरे विश्व युद्ध की तरफ ले गया।
और अंत हुआ 1945 में भयंकर हार और तबाही के साथ।
बिल्कुल, कह सकते हैं कि आधुनिक जापान का जो पहला संस्करण था वो यहाँ आकर एक तरह से खत्म हो गया, बिखर गया।
तो 1945 के बाद एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ, हार, कब्जा और फिर से उठ खड़े होने की कोशिश।
हाँ, ये दौर करीब 1955 तक चला। जापान युद्ध हार चुका था और अमेरिकी सेना का कब्जा था, SCAP कहते थे उसे, और जनरल मैकार्थर उसके प्रमुख थे। ये जापान के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा झटका था, पर एक बड़े बदलाव का दौर भी।
अमेरिकी कब्जे के तहत कई सुधार भी हुए।
जी हाँ, नया संविधान बना जिसमें लोकतंत्र पे जोर था, आर्थिक सुधारों की कोशिश हुई, लेकिन यहाँ भी जापान ने अपनी वही खासियत दिखाई।
कौन सी? चुनकर अपनाने वाली।
हाँ बिल्कुल, उसने इन सुधारों को बस चुपचाप मान नहीं लिया, बल्कि उन्हें अपनी जरूरत और अपने हालात के हिसाब से समझा, अपनाया और कहीं कहीं बदला भी।
और इस दौर का सबसे बड़ा बदलाव शायद सम्राट की भूमिका में था।
हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। पहले सम्राट को लगभग ईश्वर का दर्जा हासिल था, अब उन्हें सिर्फ राज्य का प्रतीक बना दिया गया।
और संविधान का वो आर्टिकल 9?
हाँ, अनुच्छेद 9, जिसमें जापान ने हमेशा के लिए युद्ध लड़ने का अधिकार छोड़ दिया। ये जापान की युद्ध के बाद की नई पहचान, उसकी शांतिवादी पहचान की बुनियाद बना।
तो युद्ध की हार और कब्जे के बाद जापान अपनी पहचान को फिर से गढ़ रहा था, ये आसान नहीं रहा होगा।
बिल्कुल नहीं, ये बहुत मुश्किल, बहुत दर्दनाक प्रक्रिया थी, अपनी गलतियों को समझना, भविष्य का नया रास्ता बनाना।
और फिर आया 1955 के बाद का वो दौर जिसे आर्थिक चमत्कार कहते हैं।
हाँ, वो इकोनॉमिक मिरेकल वाला दौर। युद्ध की राख से उठकर जापान ने गजब की, मतलब अभूतपूर्व आर्थिक तरक्की की।
देखते ही देखते दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।
बिल्कुल, इसके पीछे कई कारण थे। एक तो सरकार और बिजनेस का मिलकर काम करना, मिट्टी जैसी सरकारी एजेंसी का रोल, और वो आयरन ट्रायंगल यानी सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP, ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही और बड़े कॉर्पोरेट घराने, इनका गठजोड़।
और कंपनियों के काम करने के भी कुछ खास जापानी तरीके थे।
हाँ, जैसे आजीवन रोजगार का वादा, सीनियोरिटी के हिसाब से वेतन बढ़ना, और वो केइरेत्सु।
केइरेत्सु क्या थे?
ये बड़े बड़े व्यापारिक समूह थे जिनमें बैंक, ट्रेडिंग कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां सब एक दूसरे से जुड़े होते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे।
तो ये आर्थिक सफलता भी एक तरह का चुनकर अपनाना था।
हाँ कह सकते हैं, पूंजीवादी मॉडल को लिया पर उसे जापानी समाज और संस्कृति के हिसाब से ढाला। उसमें ग्रुप हार्मनी, वफादारी जैसी चीजों पर जोर रहा।
लेकिन फिर 80 के दशक के आखिर में बबल इकोनॉमी आई और 90 के दशक में वो फूट गई।
हाँ, वो बबल फूटा और उसके बाद जापान कई सालों तक आर्थिक सुस्ती के दौर में चला गया, जिसे खोए हुए दशक या लॉस्ट डेकेड्स कहा जाता है।
इस मुश्किल ने जापानी मॉडल की कुछ कमजोरियां भी दिखाई।
बिल्कुल, जैसे जॉब मार्केट का बहुत सख्त होना, बदलावों के साथ न ढल पाना, और कई ऐसी कंपनियां जो घाटे में थीं पर बस किसी तरह चल रही थीं, जिन्हें ज़ॉम्बी कंपनियां कहा गया।
और आज भी जापान कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।
जी हाँ, आर्थिक ठहराव तो है ही, साथ में आबादी का तेजी से बूढ़ा होना और जन्म दर का बहुत कम होना, ये एक बड़ा जनसांख्यिकीय संकट है। फिर ग्लोबलाइजेशन के नए दबाव हैं, दुनिया में उसकी भूमिका बदल रही है और अपनी पहचान को लेकर नई बहसें फिर से छिड़ गई हैं।
तो इस पूरी लंबी और उतार चढ़ाव भरी कहानी से कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं?
पहली और शायद सबसे अहम बात जो बार बार सामने आई है वो ये कि जापान का रास्ता पश्चिमीकरण का नहीं था।
हाँ,
वो चयनात्मक आधुनिकीकरण था। मतलब पश्चिम से आइडिया और तकनीक लिए, पर आंख बंद करके नहीं, उन्हें चुना, परखा और अपनी जरूरत और अपने मूल्यों के हिसाब से ढाला।
जैसे वो शिक्षा वाला उदाहरण था, पश्चिमी सिस्टम लिया पर अपनी नैतिक शिक्षा डाल दी।
बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि कोई भी समाज बाहरी असर को कैसे अपनाता है। क्या हम भी ऐसा करते हैं या कर सकते हैं?
दूसरी बात ये कि परंपरा और आधुनिकता दुश्मन नहीं है, वो साथ चल सकती हैं।
सही कहा, मॉडर्न बनने के लिए अपनी जड़ें काटना जरूरी नहीं। जापान ने वफादारी, समूह में एकता जैसी अपनी पुरानी अवधारणाओं को कॉरपोरेशन जैसे नए संस्थानों के लिए फिर से परिभाषित किया, उन्हें नया मतलब दिया।
हमारे यहाँ अक्सर ये बहस होती है कि परंपरा हमें पीछे खींच रही है, जापान का अनुभव शायद कुछ और दिखाता है।
हाँ, ये दिखाता है कि दोनों में एक रचनात्मक तालमेल मुमकिन है, मुश्किल है पर मुमकिन है।
तीसरी बात भी बड़ी दिलचस्प है, बाहरी दबाव जैसे पेरी का आना या बाद में अमेरिकी कब्जा बहुत जबरदस्त था।
जी,
फिर भी जापान ने काफी हद तक बदलाव की रफ्तार और दिशा पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, वो निष्क्रिय शिकार नहीं बना।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि बाहरी चुनौतियों का सामना भी अपनी शर्तों पर रचनात्मक तरीके से किया जा सकता है। ये आज के ग्लोबलाइज्ड दौर में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है।
चौथी बात पहचान के बनने से जुड़ी है।
हाँ, कि आधुनिक जापानी पहचान कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उन्हें विरासत में मिली, उसे सक्रिय रूप से गढ़ा गया था।
गढ़ा गया था मतलब?
मतलब उसमें कुछ पुरानी चीजें सोच समझकर बचाई गई और कुछ बिल्कुल नई परंपराएं ईजाद की गई, बनाई गई, जो नए जमाने के लिए जरूरी थीं।
ये बात हमारे जैसे विविधता भरे देश के लिए भी सोचने वाली है कि पहचान कैसे बनती है, बदलती है।
बिल्कुल, और पांचवी बात जो शायद इन सब का निचोड़ है, जापान का अनुभव ये साफ करता है कि मॉडर्न बनने का कोई एक ही सार्वभौमिक पश्चिमी मॉडल नहीं है।
अच्छा,
दुनिया में आधुनिकता के कई रास्ते, कई रूप हो सकते हैं। हर संस्कृति अपनी खासियत बनाए रखते हुए भी आगे बढ़ सकती है। विकास कर रहे देशों के लिए शायद ये एक बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है।
इन किताबों में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं, जो जापान के सफर को बड़े अच्छे से बयां करते हैं।
हाँ बिल्कुल, कुछ बातें बहुत गहरी हैं।
जैसे एक विचार का सार ये है कि जापान की असली प्रतिभा शायद यही रही है कि वो मॉडर्न बनते हुए भी जापानी बना रहा।
हाँ, इसका मतलब वही है, तकनीकी तरक्की भी की और अपनी सांस्कृतिक पहचान भी नहीं खोई। ये संतुलन साधना ही उनकी कला थी।
और एक और मजेदार बात, आधुनिक जापान पश्चिमी विचारों का सिर्फ एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं था, बल्कि एक सक्रिय और अक्सर चिंतित अनुवादक था।
हाँ, अनुवादक शब्द बहुत अच्छा है यहाँ। मतलब ये नकल नहीं थी, ये एक सोचा समझा अनुकूलन था, जिसमें शायद चिंताएं और दुविधाएं भी शामिल थीं कि क्या सही है क्या गलत।
युद्ध के बाद के जापान पर भी एक विचार है जो उसके विरोधाभास को दिखाता है। सार ये है कि युद्ध के बाद के शांति संविधान ने एक मौलिक विरोधाभास पैदा किया, एक विश्व स्तर पर शक्तिशाली आर्थिक दानव जो एक ही समय में एक आत्मनपुंसक राजनीतिक और सैन्य खिलाड़ी था।
बिल्कुल, ये आर्थिक शक्ति और सैन्य सीमा के बीच का जो तनाव है, जो आज भी जापान की विदेश नीति का एक बड़ा मुद्दा है, उसे ये बात पकड़ती है।
और ये वाला विचार तो सुनने में ही विरोधाभासी लगता है। जापान में परंपरा आधुनिकीकरण के बावजूद नहीं बची, बल्कि आधुनिकीकरण के कारण बची।
हाँ, ये थोड़ा चौंकाता है, पर इसका मतलब ये है कि मॉडर्न बनने की प्रक्रिया ने ही कुछ पुरानी परंपराओं को, जैसे समूह के प्रति निष्ठा या मेहनत करने की आदत, इनको नया महत्व दिया, उन्हें नए संस्थानों जैसे कंपनियों के लिए उपयोगी बना दिया और इस तरह उन्हें जिंदा रखा।
और आखिर में वो विचार जो शायद पूरी बहस को एक दिशा देता है। जापान का अनुभव बताता है कि एक सार्वभौमिक आधुनिकता के बजाय कई आधुनिकताएं हो सकती हैं।
जी हाँ, मॉडर्निटी का कोई एक साइज सबको फिट नहीं आता, या अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग रूप ले सकती है।
तो अब सवाल ये है कि इन सब बातों से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या सीख सकते हैं, इनका हमसे क्या लेना देना।
देखिए, एक तो वही सांस्कृतिक अनुकूलन वाली बात। आज हम सब ग्लोबलाइज दुनिया में जी रहे हैं, बाहर से बहुत कुछ आता है, तो कैसे हम नई चीजें सीखें, अपनाएं, पर अपनी पहचान, अपने मूल्य भी बचाए रखें। ये हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए, हर समुदाय के लिए सोचने वाली बात है।
बिल्कुल। और अगर हम कामकाज की दुनिया को देखें ऑर्गेनाइजेशंस के लिए,
हाँ, जैसे जापानी कंपनियों ने पश्चिमी मैनेजमेंट तकनीक ली, पर उन्हें अपनी वर्क कल्चर, अपनी टीम भावना के साथ मिलाया। इससे हम ये सीख सकते हैं कि जब भी हम कोई नया बदलाव लाएं, चाहे ऑफिस में हो या समाज में, तो अपनी जो कोर वैल्यूज हैं, जो अच्छी बातें हैं, उन्हें कैसे साथ लेकर चलें।
और क्या ये बातें दूसरे विकासशील देशों के लिए भी कोई सबक देती हैं?
शायद हाँ, वो जापान के चुनकर अपनाने वाले मॉडल से सीख सकते हैं कि कैसे अपनी सांस्कृतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए भी विकास किया जा सकता है, नकल करने के बजाय अपना रास्ता कैसे बनाया जाए।
और आजकल जापानी पॉप कल्चर, एनिमे, मंगा बहुत लोकप्रिय है।
हाँ,
क्या उनमें दिखने वाले विषय जैसे टेक्नोलॉजी को लेकर चिंता या खुशी, पहचान की उलझन है, क्या ये उनके इतिहास से जुड़े हैं?
बिल्कुल जुड़े हैं। उनके इतिहास के अनुभव, युद्ध, तबाही, फिर टेक्नोलॉजी से तरक्की और अब भविष्य की चिंताएं, ये सब उनकी कहानियों में, उनके आर्ट में झलकता है। इसे समझने से हम उस कल्चर को और गहराई से समझ सकते हैं।
और आखिर में व्यक्तिगत स्तर पर भी, हम सब बहु सांस्कृतिक माहौल में रहते हैं, नए विचार अपनाते हैं, ऐसे में अपने मूल मूल्यों से, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, ये संतुलन कैसे साधे, जापान की कहानी इस पर सोचने का एक अच्छा नज़रिया देती है। मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत में जो सबसे चौंकाने वाली या दिलचस्प बात रही वो ये है कि जापान कैसे इतने सारे विरोधाभासों के साथ जीता रहा है।
हाँ।
शांतिवाद भी, पर ताकतवर अर्थव्यवस्था भी, गहरी परंपराएं भी, और एकदम नई टेक्नोलॉजी भी, और इन तनावों के बावजूद वो आगे बढ़ता रहा। ये दिखाता है कि पहचान कोई ठहरी हुई साफ सुथरी चीज नहीं होती, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कश्मकश भी है और संतुलन भी।
और मेरे लिए शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि बदलाव को अपनाने के लिए अपनी पहचान को मिटाना जरूरी नहीं है। वो जो चयनात्मक संश्लेषण की बात हमने की, यानी बाहर से आने वाले प्रभावों को अपने लक्ष्यों और मूल्यों के हिसाब से चुनना, परखना, ढालना, शायद यही टिकाऊ प्रगति की कुंजी है। जापान का अनुभव कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विविधता के भविष्य के लिए एक उम्मीद जगाता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।